आर्यांश का कजिन ब्रदर प्रियांक सौरभ से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया हुआ था। सौरभ ने उसे दीवा के बारे में बताया जिसने उसकी सर्जरी की थी, साथ ही आर्यांश से भी सावधान रहने को कहा था। सौरभ ने प्रियांक को दीवा के करीब रहने की सलाह दी। सौरभ की सलाह को मानते हुए प्रियांक ने दीवा को डिनर के लिए पूछा, लेकिन दीवा ने साफ इनकार कर दिया था। वो जानती थी प्रियांक कौन है। अगर इस बारे में आर्यांश को थोड़ी सी भी भनक हो जाती कि वो सौरभ के बेटे के साथ डिनर के लिए गई है, तो आर्यांश उसकी जान ले लेता। दीवा की मना करने के बाद भी सौरभ से मिलने के बाद प्रियांक फिर से दीवा के पास जाने लगा। दीवा ने उसे देख लिया था तो वो जल्दी से किसी कमरे के अंदर चली गई, तो मजबूरन प्रियांक को वहां से जाना पड़ा। जबकि उसकी इस हरकत पर सिस्टर लीजा ने गौर किया। डॉक्टर गोयनका, वो लड़का कौन था जिसको आप इस तरह इग्नोर कर रही थीं? सिस्टर लीजा ने शरारती मुस्कुराहट के साथ पूछा।
अरे वो मिस्टर बजाज का बेटा है और मैं उसे इग्नोर नहीं कर रही थी। थोड़ी देर पहले ही तो मैं उस रूम से मिलकर आई थी, दीवा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा।
हाँ, वो तो मैं देख ही रही थी। वैसे मानना पड़ेगा डॉक्टर गोयनका, आपके खूबसूरती की वजह से यहाँ का ज़्यादातर स्टाफ आपको पसंद करता है। अब तो पेशेंट के घर वाले भी आपके पीछे पीछे घूमने लगे हैं, लीजा बोली। दीवा ने उसकी तरफ घूर कर देखा और जल्दी से ना में सर हिलाकर कहा,
ऐसा मत बोलिए, मुझे अजीब लग रहा है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है।
हाँ हाँ, सफाई मत दो, मुझे सब समझ आ रहा है कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है, लीजा ने आई विंक करके कहा। लीजा शरारती मुस्कुराहट लिए वहां से चली गई थी, जबकि दीवा को उसे मारने का मन कर रहा था। वो उनके बीच बेवजह का एंगल सेट करने की कोशिश कर रही थी। दीवा सिर पकड़कर बोली, थैंक गॉड वो सनकी आर्यांश कपूर यहाँ पर नहीं है, वरना उनकी बात सुनकर उसे यही लगता कि मेरे और उस लड़के के बीच में सच में कुछ चल रहा है। दीवा ने उसे इग्नोर किया और फिर अपने काम पर लग गई। हमेशा उसे घर जाने में देर हो जाती थी, लेकिन आज वो अपनी शिफ्ट खत्म करके शाम 5 बजे पहले ही घर पहुंच चुकी थी। आर्यांश ने ठीक 5 बजे कॉल किया ये जानने के लिए कि दीवा घर पहुंची है या नहीं। वो कॉल दीवा ने ही रिसीव किया था।
गुड इवनिंग मिस्टर कपूर, दीवा ने कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ कहा। आज उसे आर्यांश के सवालों का जवाब नहीं देना पड़ेगा, ये सोचकर वो खुश थी।
तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? आर्यांश ने थके हुए स्वर में पूछा। काफी ज्यादा काम करने की वजह से उसके सिर में दर्द हो रहा था और वो इस वक्त सिर पकड़कर बैठा था।
सब कुछ अच्छा था, दीवा ने जवाब दिया। फिर वो कुछ पल रुककर इंटेंस वॉइस में बोली, आज मैंने हॉस्पिटल में आपके कजिन को देखा।
आर्यांश अब तक अपना सिर दबा रहा था, अचानक उसके हाथ रुक गए। उसके चेहरे के भाव सर्द होने लगे थे। उसने तुरंत पूछा, उसने तुमसे कुछ कहा?
नहीं, हमारे बीच कोई खास बातचीत नहीं हुई क्योंकि वो तो अपने डैड से मिलने के लिए आया था। मैंने बस चेकअप के दौरान उसे देखा था, दीवा ने जवाब दिया।
दीवा ने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से जवाब दिया था। प्रियांक ने उसे डिनर के लिए पूछा था तो दीवा ने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। दीवा को ये बस एक फॉर्मेलिटी लगी थी। बहुत बार किसी अमीर पेशेंट की फैमिली थैंक्सगिविंग के रूप में हॉस्पिटल स्टाफ को डिनर अरेंज करके देती थी। जो भी हो उससे दूर रहो, आर्यांश ने कोल्ड वॉइस में बोला। जब भी वो दीवा से ऐसी टोन में बात करता था तो दीवा के शरीर में सहरन सी पैदा होती थी। ठीक है, दीवा ने सिर झुकाकर जवाब दिया। उसकी मजबूरी थी कि अगले 2 महीने तक उसे आर्यांश की सारी बातों को मानना था। कुछ मोमेंट्स के लिए उन दोनों के बीच एक अजीब खामोशी छा गई थी। आर्यांश दीवा पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, वो खुद को शांत कर रहा था, तो वहीं दीवा उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। कुछ पलों की चुप्पी के बाद आर्यांश ने नरम लहजे में पूछा, क्या तुमने मुझे याद किया? हालांकि दीवा आर्यांश को देख नहीं सकती थी, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर गहरे जज्बात थे। उसे लगा कि दीवा हाँ में जवाब देगी, लेकिन 2 सेकंड की देरी के बाद दीवा ने बड़ी ही बेरुखी से कहा, नहीं, मैं तुम्हें याद नहीं कर रही थी। दीवा ने गहरी सांस ली और फिर आगे बोली, तुम अच्छे से जानते हो हम साथ क्यों हैं। अगर मैं हाँ में जवाब देती तो ये बहुत ही नकली लगता, मैं तुम्हें क्यों याद करूंगी? आर्यांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दीवा का जवाब सुनकर थोड़ा टूट सा गया था। तभी दीवा ने टॉपिक बदलते हुए आगे पूछा, अच्छा बताओ आप वापस कब आ रहे हो? मैं आप कभी वापस नहीं आऊंगा, आर्यांश चिड़का थोला। आर्यांश की बात सुनकर दीवा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो मन ही मन खुश थी, आखिर वो यही तो चाहती थी कि आर्यांश उससे दूर रहे। लेकिन दीवा की ये खुशी चंद ही पलों की थी, क्योंकि अगले ही पल आर्यांश ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं यहाँ नहीं आ सकता तो क्या हुआ, तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। आर्यांश भी अपनी जिद का पक्का था। वो जानता था दीवा उसे पसंद नहीं करती, फिर भी दीवा को उससे दूर जाने की इजाजत नहीं थी। वहीं आर्यांश का जवाब सुनकर दीवा झुंझला गई थी। उसने मुंह बनाकर कहा, सुमन माँ ने खाना बना दिया है, मुझे बहुत भूख भी लगी है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, जाओ, आर्यांश ने इतना ही कहा और फिर कॉल काट दिया। दीवा आर्यांश के बारे में सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका दिमाग बार बार उसी की याद दिला रहा था। वो जल्दी से वहां से उठी और चेंज करके नीचे आई। तब तक सुमन माँ ने उसके लिए खाना लगा दिया था। डाइनिंग टेबल भरी हुई थी, लेकिन वो वहां अकेली बैठी थी तो उसे अपनी फैमिली की याद आ गई।
दीवा ने सुमन की तरफ देखा और फीकी मुस्कान के साथ कहा, सुमन माँ आइए ना, आप भी मेरे साथ खाना खाइए।
अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकती हूँ मैडम, सुमन माँ ने झिझकते हुए जवाब दिया।
दीवा समझ गई थी कि वो सुमन माँ के साथ कितना भी अपनापन का व्यवहार कर ले, लेकिन उनके बीच जो दूरी थी वो कभी नहीं मिट सकती थी। दीवा ने गहरी सांस ली और थोड़े सख्त लहजे में कहा, सुमन माँ मेरा ऑर्डर है कि आप मेरे साथ बैठकर खाना खाएं।
सुमन दीवा के ऑर्डर को कैसे अनफॉलो कर सकती थी, उसने हाँ में सर हिलाया और बोली, आप मेरी मुश्किलें बढ़ा रही हैं मैडम।
सुमन के हाथ हल्के कांप रहे थे। दीवा ने काफी प्यार से कहा, मुझे नहीं पता आप इतना क्यों डर रही हैं, रही बात आर्यांश की तो मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी, हम दोनों घर पर अकेली रहती हैं, हमारे बीच में इतनी दूरी रहेगी तो कैसा चलेगा, हम दोनों दोस्त बनकर नहीं रह सकते क्या?
हाँ लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, सुमन ने नजरें झुकाकर कहा।
यही ठीक रहेगा, और अब अगर आप खाना खाने के बजाय इसे ऐसे ही घूरती रहेंगी तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, दीवा ने हल्की सख्ती से कहा। तो सुमन ने धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया था। उनसे बातचीत बढ़ाने के लिए दीवा ने सुमन से पूछा, अच्छा बताइए क्या आपके बच्चे हैं?
सुमन ने नजर उठाकर दीवा की तरफ देखा और फिर नम आंखों से कहा, थे।
दीवा के हाथ अचानक खाते हुए रुक गए थे, उसने अनजाने में सुमन के एक गहरे जख्म को छेड़ दिया था। सुमन ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी एक छोटी बेटी थी जो 6 साल की उम्र में ही चल बसी थी, मेरा पति एक शराबी था जिसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, बेटी तो बीमारी की वजह से चल बसी और मैं वहाँ फंस गई थी, मिस्टर कपूर ने मुझे वहाँ से निकाला था, मेरे लिए वो किसी फरिश्ते से कम नहीं है।
आई एम रियली सॉरी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, दीवा ने अफसोस भरे लहजे में कहा।
सुमन की बातों से एक बात साफ थी कि आर्यांश ने अगर उसकी मदद नहीं की होती तो वो अब तक मर चुकी होती।
सुमन ने अपने आंसू साफ किए और दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप बहुत अच्छी हैं और मिस्टर कपूर भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं।
अगर सुमन माँ नहीं बताती तो दीवा को आर्यांश के इस पहलू के बारे में कभी पता नहीं चल पाता। उसके बाद दीवा ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। डिनर हो जाने के बाद वो अपने कमरे में पहुंच गई थी। रात के वक्त दीवा बालकनी में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। ये एक अननोन कॉल था। जैसे ही दीवा ने कॉल रिसीव किया, सामने से एक आवाज़ आई, हेलो मैं बोल रहा हूँ। कॉल पर मौजूद शख्स की आवाज़ सुनकर दीवा की उंगलियां मोबाइल पर कस गई थीं और इस वक्त उसके चेहरे पर गहरे गुस्से के भाव थे। मैंने चैप्टर इसलिए पब्लिश नहीं किए क्योंकि मुझे लगा ये स्टोरी कोई नहीं पढ़ता है, आपके कमेंट्स तो आते नहीं हैं, तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया।